دیکھیے بھائی آگے سبق شرع میں دیکھیے، ولک ان تحمل قوله وهو اعم على جواب سؤال مقدر كان قائلا يقول الاخص على ما علم سابقا هو الكلي الذي يصدق عليه كلي اخر صدقا كليا ولا يصدق هو على ذلك الاخر كذلك. اچھا بھائی، گزشتہ سبق میں آپ نے جزی کی ایک نئی تعریف پڑھی تھی اور وہ جزی اضافی ہے. جزی اضافی کہتے ہیں ہر اخص تحت الاعم، ہر وہ چیز جو زیادہ خاص ہو کسی دوسری چیز کے مقابلے میں، تو ہر اخص تحت الاعم. جبکہ اس سے پہلے بھی جزی کی آپ نے ایک تعریف پڑھی تھی اور وہ جزی حقیقی تھی، اور اس کی تعریف تھی وہ مفہوم کہ عقل اس کے کثیرین پر صادق آنے کو جائز قرار نہ دے، یا یوں آسان لفظوں میں یوں کہو جو کثیرین پر صادق نہ آئے بھائی، وہ ہے جزی حقیقی. اور یہ ہے جزی اضافی جو اخص تحت الاعم کو کہتے ہیں. اور پھر انہوں نے آپ کو دونوں میں نسبت بھی بتلائی تھی کہ وہ ہوا اعم، کہ یہ جو جزی جو ابھی ذکر ہوئی یعنی جزی اضافی، یہ زیادہ عام ہے من ہو اس جزی سے جو اس سے پہلے آپ کو معلوم تھی، یعنی جزی حقیق، یعنی جزی اضافی زیادہ عام ہے کس کے مقابلے میں؟ جزی حقیقی کے مقابلے میں. تو ان دونوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، کیونکہ جزی اضافی ہوئی اعم اور جزی حقیقی ہوئی اخص. تو جو بھی جزی حقیقی ہے وہ جزی اضافی ضرور، لیکن جو بھی جزی اضافی ہو اس کا جزی حقیقی ہونا ضروری نہیں، بلکہ وہ جزی اضافی جو ہے وہ کلی بھی ہو سکتی ہے. مثلا زید ہے، زید جزی حقیقی ہے تو وہ جزی اضافی بھی ہے، کیونکہ وہ اخص تحت الاعم بھی ہے، یعنی کیونکہ وہ انسان کے نیچے واقع ہے اور انسان کے افراد میں سے ہے وہ، اور جزی اضافی اس کا جزی حقیقی ہونا ضروری نہیں. جیسے انسان، یہ جزی اضافی تو ہے لیکن جزی حقیقی نہیں، کیونکہ یہ تو کلی ہے، اور کلی تو وہ ہے جو کثیرین پر صادق آئے، اور جزی حقیقی تو وہ ہوتی ہے جو کثیرین پر صادق نہ آئے. تو حاصل کلام کیا ہوا کہ ہر جزی حقیقی جزی اضافی تو ہے، لیکن ہر جزی اضافی اس کا جزی حقیقی ہونا ضروری نہیں، بلکہ وہ کلی بھی ہو سکتی ہے. اور اس عبارت میں دیکھو، انہوں نے متن میں کہا تھا وہوا اعم، یہاں سے کیا بیان کر رہے تھے؟ نسبت بیان کر رہے تھے جزی حقیقی اور جزی اضافی کے درمیان. اور یہ ہوا ضمیر کس کو لوٹائی تھی؟ جزی کو. اور اعم منہ، میں نے بتایا تھا منہ یہاں محذوف ہے، تو منہ میں ہا ضمیر ہے، اور وہ کس کو راجع؟ وہ جزی حقیقی کو. تو یہ جو جزی اضافی ہے یہ زیادہ عام ہے کس کے مقابلے میں؟ اس جزی حقیقی کے مقابلے میں. اس کے بعد یہ شرح میں جو آیا تھا ولک ان تحمل قولہ وهو اعم على جواب سؤال مقدر، یہاں سے شارح ایک نیا نقطہ آپ کو بتلانا چاہتے تھے. ان کے کسی استاد نے اس مقام میں ایک اور نقطہ بیان کیا، اس کو بھی بیان کرنا چاہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اگر آپ چاہیں تو وہوا اعم اس کو سوال مقدر کا جواب بھی بنا سکتے ہیں، سوال مقدر کا جواب بھی بنا سکتے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ ماتن نے جزی کی تعریف اخص کے ساتھ کی، جزی اضافی کی تعریف ماتن نے اخص کے ساتھ کی. وقد یقال الجزئی للاخص من الشیء، تو جزی اضافی کی تعریف اخص کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جزی اضافی اخص من الشیء کا نام ہے، اور پیچھے اخص کا ذکر ہوا تھا اور وہاں سے پتا چلا تھا کہ اخص کس چیز کا نام ہے؟ کلی کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ کلی کا نام ہے. جب کلی کا نام ہے تو یہاں بھی اخص سے کیا مراد ہوگی؟ کلی. اس سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ جزی اضافی وہ صرف کلی ہوگی. توجہ ہے، کیونکہ جزی اضافی کس کا نام؟ اخص من الشیء کا، اور اخص پیچھے بتلایا تھا کس کا نام ہے؟ کلی کا نام. تو جب جزی اضافی اخص من الشیء کا نام، تو اخص تو کلی ہوتی ہے، تو معلوم ہوا جزی اضافی صرف کلی ہوگی. حالانکہ یہ تو درست نہیں، جزی اضافی وہ تو کلی بھی ہوتی ہے اور جزی حقیقی بھی. توجہ ہے، جزی اضافی میں کون کون داخل ہوتا ہے؟ जुजी हकीकी भी और कुल्ली भी। जुजी इजाफी वो जुजी हकीकी को शामिल होती है, लेकिन मातिन ने जो तारीफ की उसके मुताबिक जुजी हकीकी इसके अंदर दाखिल नहीं हो रही। तो मातिन पर एतराज होता है कि उन्होंने जुजी इजाफी की तारीफ अखस मिनशय के साथ की, ये तो जुजी हकीकी को शामिल नहीं। तो इसी एतराज का जवाब आगे मातिन दे रहे हैं, वह हुआ आम्मू हुआ जमीर अखस को राजे, कि ये वाला अखस जो है ये ज्यादा आम है मीन हो उस अखस के मुकाबले में जो पीछे जिक्र हुआ था। ये वाला अखस उस अखस के मुकाबले में ज्यादा आम है। वो तो सिर्फ कुल्ली को शामिल था, लेकिन ये कुल्ली के साथ साथ जुजी को भी शामिल है। तो अब जुजी इजाफी के अंदर कुल्ली भी दाखिल हुई और जुजी हकीकी भी दाखिल हो गई, लिहाजा अब एतराज खत्म हुआ। जब बात समझ में आ गई, देखिए भाई किताब पर, वला का अन तहमिला कौलहू व हुआ अम्मु अला जवाब सुआलिन, और आपके लिए यह भी जायज है कि आप महमूल कर लें मुसन्निफ का कौल व हुआ अम को अला जवाब सुआलिन मुकद्दरिन, एक सवाल मुकद्दर के जवाब पर, कि एक सवाल मुकद्दर का जवाब दे रहे हैं। का अन्न कायलन यकूलु, गोया के कहने वाला कहता है, अल अखस अला मा उलिमा साबिकन, के अखस बिना बर उसके जो माकबल में मालूम हुआ, वल कुल्लीयुल्लदी यस्तुकु अलैहि कुल्लीयुन आखरु सिदकन कुल्लियन वला यस्तुकु हुआ अला दालिकल आखिर कदालिक। भाई अखस, अखस किसे कहते थे? माकबल में क्या बतलाया था? इंसान और हैवान को जरा तसव्वुर कर लें, एक है इंसान और एक है हैवान, दोनों में कौन सी निस्बत? उमूम खुसूस मुतलक। हर इंसान वो क्या है? हैवान, लेकिन हर हैवान इंसान नहीं। तो इनमें अखस कौन? इंसान, और आम कौन? हैवान। तो इंसान जो अखस है वो ऐसी कुल्ली है कि दूसरी कुल्ली तो इसके ऊपर पूरे तौर पर सादिक आ रही है, लेकिन ये उस पर इस तरह यानी पूरे तौर पर सादिक नहीं आ रहा। यही बयान कर रहे हैं, कअन्न क़ाइलन यकूलु अल अखस अला मा उलिमा साबिकन, के अखस जो है बिना बर उसके जो कबल में मालूम हुआ, वल कुल्लीयुल्लज़ी यस्तुकु अलैहि कुल्लियुन आखरु सिदकन कुल्लियन, अखस वो कुल्ली है जिस पर दूसरी कुल्ली पूरे तौर पर सादिक आए, वला यस्तुक हुआ अला दालिकल आखरी का दालिक, और ये उस कुल्ली पर इस तरह सादिक न आए यानी पूरे तौर पर सादिक। कजालिक का माना समझ में आ रहा है कि ये उस पर इस तरह यानी पूरे तौर पर सादिक न आए। वल जुज़ियुल इज़ाफ़ियु ला यल्ज़मु अन यकूना कुल्लियन बल कद यकूनु जुज़ियन हकीकियन, और जुज़ी इज़ाफ़ी वो तो लाजिम नहीं है कि कुल्ली हो, बल्कि कद यकूनु जुज़ियन हकीकियन, वो तो कभी कभार जुज़ी हकीकी भी होती है। फतफसीर जुज़ियुल इज़ाफ़ी बिल अख़स बिहाज़ल माना तफसीर बिल अख़स, तो तफसीर करना जुज़ी इज़ाफ़ी की बिल अख़स किसके साथ? अखस के साथ तफसीर करना है, उसका माना बयान करना यानी उसकी तारीफ करना, तो जुजी इजाफी की तारीफ करना अखस के साथ बिहाज अल माना, वो अखस जो इस माना के साथ हो। कौन सा अखस? पीछे अखस जो आया था किस माना में था? कुल्ली, कुल्ली के माना। तो तफसीर करना जुजी इजाफी की इस अखस के साथ जो इस माना यानी कुल्ली के माना में हो, तफसीर उन बिल अखस, ये क्या है? तफसीर बिल अखस है। भाई देखो, याद रखो, एक है तारीफ और एक है मुअर्रफ। तारीफ और मुअर्रफ आपने पढ़ा था तारीफ और हुज्जत के बारे में, कि दो मालूम तसव्वुरों को मिलाकर एक मजहूल तसव्वुर को हासिल किया जाता है। तो ये जो दो मालूम तसव्वुर जिनको आपने जोड़ा और तरतीब दिया, और इन्होंने कहां तक पहुंचाया? मजहूल तसव्वुर तक। तो ये मालूम तसव्वुर तारीफ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसको तारीफ भी कहते हैं, इसको मुअर्रिफ भी कहते हैं, और इसको कौले शारह यानी एक चीज की शरह करता है। जैसे हैवान नातिक, हैवान और नातिक को मिलाया तो हमें इंसान की हकीकत हासिल हो गई, इंसान का हमें पता चल गया। तो ये हैवान और नातिक इन्होंने कहां तक पहुंचाया? इंसान तक। तो ये हैवान नातिक ये क्या है? तारीफ है। इसी का दूसरा नाम क्या? मुआर्रिफ भी है, ये पहचान करवाने वाला है, मुआर्रिफ है। और इसी का नाम क्या है, कौल शारह, यानी ये कौल इंसान की शरा करने वाला है, उसको खोल कर बयान करने वाला है। तो वो मालूम तसव्वुरात जो मजहूल तसव्वुर तक पहुंचा दें उनको क्या कहते हैं, तारीफ, और इसी तरह मुआर्रिफ और कौल शारह। और जिस चीज तक पहुंचाएं उसको क्या कहते हैं, मुआर्रफ कहते हैं। तो हैवान नातिक ये क्या है, तारीफ है, ये यूं कहें मुआर्रिफ है, या ये कौले शारह, और किस तक पहुंचाया, इंसान तक। तो इंसान क्या हुआ, मुआर्रफ हुआ। या जैसे आपने नह के अंदर पढ़ा है, अल कलिमतु लफ्जों वुज़िअल मानम मुफ्रदिन, कलिमा की तारीफ क्या करते हैं, लफ्जों वुज़िअल मानम मुफ्रदिन, कई चीजों को जोड़ा, इससे आपको कलिमा का पता चल गया। पहले कलिमा का पता नहीं था, यह एक मजहूल तसव्वुर था। फिर उसके बाद लफ्ज लफ्ज को जोड़ा कि कलिमा क्या होता है, लफ्ज वुज़िअ वज़ा का लफ्ज को लाए कि उसमें वज़ा होती है, और लिमानम मालूम, और किसके लिए वज़ा होता है, माने। तो आपको लफ्ज का भी पता था, वज़ा का भी पता था, माना के भी पता था, मुफरद का भी पता, ये तीन चार चीजों का आपको पता था। इन चारों को मिलाया तरतीब से तो किसकी क्या किसकी पहचान हो गई आपको, अल कलिमा की पहचान हो गई। बात समझ में आ रही है, ये जो मुख्तलिफ उलूम में चीजों की आप तारीफें पढ़ते रहते हैं वो यही मुआर्रिफ है कि कुछ मालूम तसव्वुरात को आपने मिलाया, और उन मालूम तसव्वुरात ने आपको कहां तक पहुंचा दिया, मजहूल तसव्वुर तक। आपको अल कलिमा की तारीफ मालूम नहीं थी कि कलिमा किसे कहते हैं, तो साहिब किताब ने क्या तारीफ की, लफ्जों वुज़िअ लिमाना मुफ्रदिन, आपको लफ्ज का भी पता था, आपको वज़ा का भी पता था, आपको माना का भी पता था, आपको मुफ्रद का भी पता था, ये चार तसव्वुरात मिलाए, और इससे आपको किसकी पहचान हो गई, कलिमा की पहचान हो गई। तो कलिमा हुआ मुआर्रफ, और ये क्या हुई, ये तारीफ, इसी का दूसरा नाम क्या, मुआर्रिफ भी, और इसी का नाम कौले शारह भी। इसी तरह दो या तीन मालूम तस्दीकात को मिलाते हैं तो वो हमें मजहूल तस्दीक तक पहुंचा देती हैं। तो ये जो मालूम तस्दीकात जो हमें मजहूल तक पहुंचाने वाली हैं, इनको दलील और हुज्जत कहते हैं। क्या कहते हैं, दलील और हुज्जत कहते हैं। अच्छा, तो बात मैं कर रहा था तारीफ की, भाई तारीफ याद रखो, ये जो तारीफ है ये जामे अमान्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जामे अमान्य होनी चाहिए। जामे का माना यह है, जिस चीज की तारीफ कर रहे हैं उसके सारे अफराद उसके अंदर आने चाहिए, कोई एक फर्द भी बाहर ना रहे। जैसे कलिमा, कलिमा के तीन अफराद हैं, इसम फेल और हर। तवज्जो है, कलिमा के तीन अफराद हैं, इसम फेल और हर। तो कलिमा की ऐसी तारीफ की, लफ्जों वुज़िअ लिमानम मुफ्रदिन, कि ये तीनों उसके अंदर दाखिल हो गए। अगर कलिमा की तारीफ ऐसी करते कि इन तीन में से दो दाखिल होते और तीसरा बाहर रह जाता, वो तारीफ उस पर सादिक ही नहीं आ रही, तो हम कहते ये तारीफ जामिया नहीं, ये अपने तमाम अफराद को जमा करने वाली नहीं है। तारीफ को क्या होना चाहिए, जामिया और मानिया। जामिया का क्या माना, कि ये मुआर्रफ जो जिसकी तारीफ कर रहे हैं उसके तमाम अफराद का इहाता कर ले, सारे इसके अंदर आ जाए, कोई भी बाहर ना रहे। तो अगर कलिमा की आप ऐसी तारीफ करते कि उसके अंदर इसम और फेल तो आ जाते लेकिन हर्फ दाखिल ना होता, तो हम क्या कहते, ये कैसी तारीफ है, जामिया नहीं, इसने कलिमा के सारे अफराद का इहाता नहीं किया। तो जामे का क्या माना, कि वो तारीफ मुआर्रफ के तमाम अफराद को जामिअ हो, शामिल हो, कोई उससे बाहर न रहे। और तारीफ को मानिअ भी होना चाहिए, यानी गैर उसमें दाखिल ना हो, गैर उसमें ये जो अफराद हैं वही दाखिल हों, बाकी इसके अंदर दाखिल ना हो। अगर बाकी भी इसके अंदर दाखिल हो रहे हैं तो कहेंगे कि ये तारीफ मानिअ नहीं है, यानी गैर भी इसके अंदर दाखिल हो रहा है। तो तारीफ को हमेशा क्या होना चाहिए, जामिअ मानिअ होना चाहिए। या दूसरे लफ्जों में यूं कहो, दूसरे लफ्जों में यूं कहो, एक है मुआर्रफ, एक है मुआर्रिफ, यानी तारीफ। तारीफ याद रखो, मुआर्रफ और तारीफ को मुसावी होना चाहिए। मुआर्रफ और तारीफ को मुसावी होना चाहिए। जहां मुआर्रफ सादिका है वहां तारीफ भी सादिका है। यूं कहें जहां मुआर्रफ सादिका है वहां मुआर्रफ भी सादिका है। तो तारीफ को मुआर्रफ से आम भी नहीं होना चाहिए, अखास भी नहीं होना चाहिए, मुबायन भी नहीं होना चाहिए, बल्कि मुसावी होना चाहिए। तवज्जो है क्या? तारीफ को मुआर्रफ से अखस भी नहीं होना चाहिए, आम भी नहीं होना चाहिए, मुबायन भी नहीं होना चाहिए, बल्कि मुसावी होना चाहिए। मसलन आपसे मैंने पूछा रजुले पाकिस्तानी की तारीफ करें, आपने कहा कि वो जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में रहते हैं, ये यूं कहें वो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहते हैं, ये तो गैर इसके अंदर दाखिल हो गया, तो तारीफ आम हो गई। क्या हो गई? हाँ, ज्यादा आम है। किसके मुकाबले में? मुआर्रफ के मुकाबले में। मुआर्रफ क्या है? रजुले पाकिस्तानी, और तारीफ उसके अंदर पाकिस्तानी भी दाखिल हो रहे हैं और अफगानिस्तान वाले भी दाखिल हो रहे हैं, तो ये क्या हुई? तारीफ बिल आम। हालांकि तारीफ को आम नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? मुसावी होना चाहिए। और तारीफ बिल अखस भी दुरुस्त नहीं है। मसलन आपसे मैंने कहा कि रजुले पाकिस्तानी की तारीफ करें, आपने जवाब में कहा कि वो लोग जो लाहौर, कराची, पिशावर और कोयटा में रहते हैं, तो ये तारीफ अपने तमाम अफराद को जामे है। क्या सिर्फ यही रजुले पाकिस्तानी है? इसके अलावा और हैं कि और नहीं है? और भी हैं। तो ये तारीफ अखस हुई। क्या हुई? मुआर्रफ के मुकाबले में ये तारीफ क्या हो गई? अखस। तो तारीफ को आम भी नहीं होना चाहिए कि गैर इसके अंदर आ जाएं, तारीफ को अखस भी नहीं होना चाहिए कि सारे अफराद इसके अंदर न आएं, और तारीफ को मुबायन भी नहीं होना चाहिए। मसलन आपसे कहा किसने रजुले पाकिस्तानी की तारीफ करें, आपने कहा वो जो अफगानिस्तान में रहते हैं, या आपने कहा वो जो हिंदुस्तान में रहते हैं, भाई ये तो आपने तारीफ बिल मुबायन कर दी, इनमें से तो किसी पर भी मुआर्रफ सादिक नहीं आ रहा, इनमें से तो कोई भी पाकिस्तानी नहीं है। तो तारीफ अखस भी नहीं होनी चाहिए, आम भी नहीं होनी चाहिए, मुबायन भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि तारीफ क्या होनी चाहिए? मुसावी। लिहाजा रजुल पाकिस्तानी की तारीफ आपसे किसने पूछी, तो आपने कहा वो रजुल जो पाकिस्तान में रहते हैं, अब तारीफ मुसावी है। जो पाकिस्तान में रहता है वो क्या है? रजुले पाकिस्तानी है। दोनों मुसावी हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जो पाकिस्तान में रहने वाला है वो रजुले पाकिस्तानी, और जो रजुले पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में रहने वाला। सूरत समझ में आ गई? एतराज ये कर रहे थे, वही एतराज जो मैंने जिक्र कर दिया उसी की तकरीर शारह कर रहे हैं कि आपने जुजी की तारीफ किसके साथ की? ऊपर मतन में देखें, अखस के साथ, और अखस पीछे बताया था किसका नाम है? कुल्ले का नाम है, और जुजी इजाफी में तो कुल्ली भी दाखिल होती है और जुजी हकीकी भी, लेकिन आपकी इस तारीफ से जुजी इजाफी की तारीफ में सिर्फ कौन दाखिल? सिर्फ कुल्ली। तवज्जो है, आपने जो जुजी इजाफी की तारीफ की अखस के साथ, और अखस तो किसका नाम है? कुल्ली। तो ये तो जुजी इजाफी सिर्फ कुल्ली हुई, हालांकि जुजी इजाफी सिर्फ कुल्ली होती है या जुजी हकीकी भी जुजी इजाफी होती है? जुजी हकीकी भी जुजी इजाफी है, वो भी इसके अंदर दाखिल। तो जुजी इजाफी की तारीफ आपने जो अखस कर दी, ये तारीफ बिल अखस है। ये क्या है? तारीफ बिल अखस भी नहीं होनी चाहिए, तारीफ बिल आम भी नहीं होनी चाहिए, तारीफ बिल मुबाइन भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि तारीफ तो किसके जरिए होनी चाहिए? मुसावी के जरिए। बात समझ में आ गई? यही बयान कर रहे हैं। कहते हैं फतफसीर उल जुज़ियल इजाफी बिल अखस बिहाज अल माना, जुजी इजाफी की तारीफ बिल अखस करना बिहाज अल माना, इस माना के साथ, यानी अखस का कौन सा माना? कुल्ली। कुल्ली वाले माना के साथ कि जुजी की इजाफी की तारीफ अखस के साथ करना, तफसीर उन बिल अखस, ये क्या है? तफसीर बिल अखस है। और तफसीर और तारीफ बिल अखस होनी चाहिए या बिल मुसावी? बिल मुसावी। फअजाब बिकौली ही व हुआ आम्मु, तो मातिन ने जवाब दिया अपने कौल व हुआ आम्मु के जरिए, अयल अखसुल मस्कूर हुआ हुना आम मिनल मालूम साबिकन आनिफन, कि वो जो अखस यहां मजकूर है आम, वो ज्यादा आम है, मिनल मालूम साबिकन, वो जो माकबल में मालूम हुआ था आनिफन, अभी यहां जो अखस मजकूर हुआ यह ज्यादा आम है उस अखस से जो माकबल में अभी मालूम हुआ था। माकबल में अखस आया था उससे उसका क्या माना था, कुल्ली। ये वाला अखस उसके मुकाबले में ज्यादा आम है, वो सिर्फ कुल्ली को शामिल था लेकिन ये कुल्ली के साथ साथ जुजी हकीकी को भी शामिल है। बात समझ में आ गई। ये माना है कि अयल अखसुल मजकूर हाहुना, कि यहां पर जो अखस मजकूर है अम्मु मिनल मालूम साबिकन, वो ज्यादा आम है उस अखस से जो माकबल में मालूम हुआ था। आनिफन अभी, आनिफन का माना है अभी। अभी याद रखो उर्दू में अभी ये दो किस्म पर है, एक जमाना हाल वाला एक जमाना माजी वाला। उर्दू में दोनों के लिए अभी का लफ्ज इस्तेमाल होता है। मसलन आपसे कोई पूछे आप क्या कर रहे हैं, आप कहते हैं अभी मैं पढ़ रहा हूं। अभी मैं, देखा ये अभी कौन सा है, हाल वाला। और एक अभी जमाने माजी वाला होता है, जैसे आपसे किसी ने कहा क्या जैद आ गया है, आप कहते हैं अभी आया है, अभी अभी आया है, यानी अभी करीब के जमाने में वो आ गया है। तो ये अभी कौन सा है, माजी वाला है, माजी वाला है। तो उर्दू में दोनों के लिए अभी का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में हाल वाला अभी हो उसके लिए अलआन लफ्ज बोलते हैं, अलआना अलआना अभी, और माजी वाला अभी हो तो उसके लिए आनिफन बोलते हैं। बात समझ में आ गई। और वो जो अखस का माना मालूम हुआ था, क्या माना था पहले, कुल्ली, वो भी अभी मालूम हुआ था थोड़ी देर पहले ही, एक दो सतरें कबल ही मालूम हुआ था। बात समझ में आ गई। तो ये माना है वो जो मिनल मालूम साबिकन आनिफन, वो अखस जो मालूम हुआ था माकबल में आनिफन अभी। व मिन हु युअलम अन्नल जुज़ई बिहादल माना अअम मिनल जुज़ई अल हकीकी। ऊपर जो था मतन, पहली तकरीर क्या थी, वह हुआ अअम, हुआ जमीर किसको लौटाई थी, जुज़ई को। पहली तकरीर वह हुआ अअम के जरिए मातिन क्या बयान करना चाहते हैं, निस्बत बयान करना चाहते हैं। और दूसरी तकरीर के मुताबिक हुआ जमीर किसको लौटाई, अखस को। इसके और इसके जरिए क्या करना चाहते हैं, सवाल मुकद्दर का जवाब देना चाहते हैं। तो ये जो दूसरी तकरीर है इसके मुताबिक भी निस्बत मालूम हो रही है लेकिन इल्तिजामन, पहले सराहतन निस्बत मालूम हो रही थी। वह हुआ आम्मू, ये जुजी इजाफी ज्यादा आम है किसके मुकाबले में, जुजी हकीकी के मुकाबले में। तो पहले सराहतन निस्बत बयान हो रही थी, आप भी निस्बत, वह हुआ आम से निस्बत मालूम हो गई लेकिन इल्तिजामन मालूम हुई। किस तरह, क्यों, इधर देखो, क्योंकि जुजी इजाफी की तारीफ किसके साथ की, अखास के साथ, और बताया ये वाला अखास माकबल में जो अखस आया था उससे ज्यादा आम। जब ये वाला अखस ज्यादा आम है तो इसी के साथ तो तारीफ किसकी कर रहे हैं, जुजी की। इसी अखस के साथ तारीफ किसकी कर रहे हैं, जुजी की। जब ये अखस ज्यादा आम है तो ये जुजी भी क्या हुई, ज्यादा आम हुई। किसके मुकाबले में, जुजी हकीकी के मुकाबले में। बात समझ में आ गई। तो इससे भी निस्बत का तो पता चल गया कि जुजी हकीकी और जुजी इजाफी में उमूम खसूस मुतलक की निस्बत है, लेकिन पहले सराहतन पता चल रहा था और अब इल्तिजामन, यानी इसके साथ लाजिम है। जब अखस आम हुआ, जब अखस क्या हुआ, ज्यादा आम हुआ, तो इसी के साथ तो तारीफ की है जुजी की, तो जुजी भी इजाफी भी क्या हुई, वो भी ज्यादा आम हुई उस जुजी के मुकाबले में जो पहले जिक्र हुई थी। बात समझ में आ गई। ये माना है वमीन हु युअलम, और इसी से मालूम हो गया कि अन्नल जुज़ई बिहादल माना अअम्मु मिनल जुज़ई अल हकीकी, कि जुज़ी जो है इस माना के साथ, यानी ये जो जुज़ी इजाफी है, यूं कहें कि जुज़ी इस माना के साथ, यानी अखस मिनल शय के माना के साथ, अअम्मु मिनल जुज़ई अल हकीकी, ये ज्यादा आम है जुज़ी हकीकी से। फयुअलम बयानुन निस्बत इल्तिजामन, तो इससे निस्बत का बयान मालूम हो गया इल्तिजामन। किस तरह, इल्तिजामी तौर पर, यानी वो इसके साथ लाजिम है। क्या है भाई, फिर देखो इस जुजी की तारीफ किसके साथ की, जुजी इजाफी की, अखस के साथ, किसके साथ, और अखस बताया ये वाला अखस उस अखस से ज्यादा आम। वो तो सिर्फ कुल्ली था लेकिन ये कुल्ली के साथ साथ जुजी हकीकी भी है। तो जुजी की तारीफ की इस अखस के साथ, जब ये अखस ज्यादा आम है तो इसी अखस के साथ तो किसकी तारीफ कर रहे हैं, جی اخص کے ساتھ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ جزی اضافی کی. تو جزی اضافی بھی کیا ہوا؟ زیادہ عام. جب یہ اخص زیادہ عام ہے تو یعنی تعریف دیکھو پھر متن بھی آؤ ذرا. وقد یقال الجزی للاخص من الشیء. یہ جزی یہ ہے معرف اور اخص من الشیء کیا ہے؟ یہ اس کے معرف. توجہ ہے متن پہ نظر ہے. جزی کیا ہے؟ معرف. جزی کیا ہے؟ معرف. اس کی تعریف کی جا رہی ہے. اور اخص من الشیء کیا ہے؟ اس کی تعریف ہے. تو تعریف میں بتایا یہ جو اخص ہے یہ زیادہ عام ہے اس اخص سے جو پہلے آیا تھا. یہ اخص کس کو شامل؟ جزی حقیقی کو بھی شامل ہے. جب یہ جزی حقیقی کو شامل ہوا تو یہ تعریف کس کی ہے؟ جزی اضافی کی. تو جزی اضافی بھی کس کو شامل ہوئی؟ جزی حقیقی کو بھی شامل ہوئی. تو یہ اس کے مقابلے میں کیا ہو گئی؟ زیادہ عام. تو التزاماً نسبت معلوم ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی فیعلم بیان النسبت التزاماً. تو نسبت معلوم ہو گئی التزامی طور پر. وہذا من فوائد بعض مشائخنا. اور یہ ہمارے بعض مشائخ یعنی بعض اساتذہ کے فوائد میں سے ہے. یعنی انہوں نے یہ فائدہ ذکر کیا تھا. طاب اللہ ثراہ. اللہ ان کی قبر کو اچھا کرے. طابہ کا معنی اچھا کرنا. اور سارا ویسے گیلی مٹی کو کہتے ہیں, تر مٹی, لیکن یہاں مراد قبر ہے. سراہ ان کی قبر. طاب اللہ سراہ. اللہ ان کی قبر اچھی فرمائے. یعنی ان کی آخرت کی اللہ منزلیں آسان فرمائے. بات سمجھ میں آ گئی. حاصل کلام کیا ہوا؟ انہوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ ہوا عام کو آپ سوال مقدر کا جواب بھی بنا سکتے ہیں. اس صورت میں یہ ہوا ضمیر اخص کو راجع کریں. کس کو؟ اخص. گویا ماقبل سے ایک اعتراض پیدا ہوا. اعتراض یہ کہ آپ نے جزی اضافی کی تعریف اخص کے ساتھ کی, اور اخص تو کلی کا نام ہے. معلوم ہوا جزی اضافی صرف کلی ہونی چاہیے, حالانکہ جزی اضافی صرف کلی تو نہیں ہوتی, بلکہ وہ تو کلی بھی ہوتی ہے اور جزی حقیقی بھی ہوتی ہے. تو اس اعتراض کا آگے جواب دے دیا. وہ ہوا عام, کہ یہ جو اخص یہاں ذکر ہوا یہ زیادہ عام ہے اس اخص کے مقابلے میں جو پہلے آپ کو معلوم ہوا تھا. وہ تو صرف کلی پر صادق آتا تھا, لیکن یہ کلی کے ساتھ ساتھ جزی کو بھی شامل ہے. اور جب یہ اخص زیادہ عام ہوا تو یہ تعریف کس کی تھی؟ جزی اضافی. تو جزی اضافی بھی زیادہ عام ہو گئی. کس کے مقابلے میں؟ جزی حقیقی کے مقابلے میں. اور اب یہ زیادہ عام ہوئی تو دونوں میں کون سی نسبت ہوئی؟ عموم و خصوص مطلق کی. اس نسبت کا بھی پتہ چل گیا اس سے. بات سمجھ میں آ گئی. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.